पेश हैं आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। बैतर सांसद पॉल टूल बने न्यू साउथ वेल्स नेशनल्स के नेता और राज्य के डिप्टी प्रीमियर। भारत निर्मित कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है WHO से मंजूरी। और फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया ने किया खिलाड़ियों से आगे आकर यौन शोषण की शिकायत दर्ज करने का आग्रह। और अब खबरें विस्तार से। पॉल टूल न्यू साउथ वेल्स नेशनल्स के नए नेता और डिप्टी प्रीमियर चुने गए हैं। बैथर्स्ट सांसद श्री टूल श्री जॉन बैरिलारो के इस्तीफे के बाद उनके पद पर आए हैं। श्री बैरिलारो और पूर्व प्रीमियर ग्लैडिस पेरिजिक्लियन ने बीते हफ्ते अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। श्री टूल जल मंत्री मेलिंडा पावे के खिलाफ 15-3 के फर्क से जीत कर राज्य पार्टी के दल नेता बने हैं। ब्रॉनी टेलर नेशनल्स पार्टी की डिप्टी लीडर रहेंगी। सुश्री ग्लैडिस पेरिजिक्लियन के नेतृत्व में न्यू साउथ वेल्स के अटॉर्नी जनरल रहे मार्क स्पीकमैन का कहना है कि नवनिर्वाचित प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे कोरोना वायरस प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की प्रक्रिया में कई पहलुओं पर विचार करेंगे। उनका कहना है कि सरकार स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्देशित नहीं है।
Well, we expect to hit the 70% milestone in a couple of days, and that means that the first set of easings will happen on Monday. We will continue to listen to health advice, to economic advice. If some people think we are dictated to by health bureaucrats, that's not the case. We have to watch jobs, people's mental health, the effect on education, the effect on businesses, all those are weighed up. But at the end of the day, our job is to look after the people of New South Wales.
राज्य में आज 594 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले और 10 मृत्यु दर्ज की गई हैं। उधर विक्टोरिया में आज 1420 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले और 11 मृत्यु दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री मार्टिन फुले का कहना है कि बीते दिन मंगलवार को राज्य में अस्पताल में कोरोना के चलते भर्ती हुए मरीजों में अधिकांश लोगों को टीके नहीं लगे थे। उनका कहना है कि टीकाकरण अभियान में वितरित होने वाली खुराकों में इजाफा हुआ है।
Of those people hospitalized yesterday, some 66% were unvaccinated, 28% were partially vaccinated and 6% were vaccinated. We are now sitting at 83.8% of the 16 and over population of Victorians having received a first dose of the COVID-19 vaccine and 54% having received their full double doses.
यह तब आता है जब 4 मेलबर्न के छात्र जो राज्य स्तरीय GAT यानी जनरल अचीवमेंट टेस्ट की परीक्षा के लिए कल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट्री मैरिटाइम माइनिंग एंड एनर्जी यूनियन का यानी CFMEU का कहना है कि राज्य में सामने आने वाले मामलों में आई इस तेजी में कई मामले कंस्ट्रक्शन विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हैं और वे उन सदस्यों को निष्कासित करेंगे जिन्होंने इन विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। उधर क्वींसलैंड में आज कोई भी नया कोरोना मामला दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीनेट यंग का कहना है कि इससे निवासियों को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि खतरा टल गया है। उनका कहना है कि डेल्टा वेरिएंट कभी भी फिर क्वींसलैंड पहुंच सकता है और इसलिए निवासियों को टीका लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। साउथ ऑस्ट्रेलिया में पुलिस रातों रात माउंट गैम्बियर में एक गाड़ी में आग लगाए जाने की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि ये उन महिला पर हमला था जो बीते हफ्ते कोरोना संक्रमित पाई गई थी। इस आग में गाड़ी पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई और घर में भी ऊपरी क्षति आई है। अग्निशमन दलों ने समय रहते इस आग पर काबू पा लिया था। हादसे के वक्त कथित महिला और उनके बच्चे एडिलेड में होटल संगरोध कर रहे थे और घर पर कोई नहीं था। माउंट गैम्बियर में ये संक्रमण आने के बाद भारी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया के COVID-19 टीकाकरण अभियान के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल जॉन फ्रीवेन ने चेताया है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में टीकाकरण अभियान में लापरवाही के चलते टीकाकरण दर धीमी पड़ गई है। राष्ट्रीय स्तर पर 16 साल से अधिक उम्र के 57% लोगों को पूर्ण टीका मिल चुका है, जबकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में अब भी ये आंकड़ा 50% से कम है। श्री फ्रिवेन ने चैनल 9 से कहा है कि इन राज्यों में देश के बाकी हिस्सों की तरह आपात स्थितियां नहीं आई हैं, इसलिए वे इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं।
There's certainly an element of complacency in those places because they haven't had the major outbreaks. I think, you know, for much of WA, it's just been life is normal for many people there. But I just implore them that, you know, this vaccination is it's so effective. We've seen it in the rates of hospitalizations and even deaths. So, you know, if we make the assumption that Delta eventually finds its way across the entire land, that now is the time to get vaccinated. And
उन्होंने ये भी बताया कि बूस्टर डोज वितरित करने पर विचार किया जा रहा है और मुमकिन है कि यह अगले साल शुरू भी हो जाए, जब कोरोना का टीका फ्लू के टीके की तरह देखा जा सकेगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। न्यूजीलैंड ने कोरोना संबंधी 28वीं मृत्यु दर्ज की है। देश में 39 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इन मामलों में से 30 तालाबंदी झेल रहे ऑकलैंड शहर में सामने आए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस में अमरीकी सचिव एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है ताकि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमरीका के बीच नई सुरक्षा संधि से इन देशों और फ्रांस के रिश्तों में आई खटास को दूर किया जा सके। इस संधि के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ कई बिलियन डॉलर की सबमरीन डील से फ्रांस को हाथ धोना पड़ा था। श्री ब्लिंकन ने कहा है कि इन दोनों देशों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए थी और ये कि हम कई बार आपसी रिश्तों को हल्के में ले लेते हैं। सबमरीन अनुबंध टूटने के बाद ये फ्रांस की इन देशों के किसी भी राजदूत के साथ सबसे उच्च स्तरीय मुलाकात थी। श्री मैक्रोन का कहना है कि वे उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत में जब वे रोम में अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे, इन मनमुटावों को सुलझाया जा सकेगा।
And I think we scheduled to discuss together mid-October. We will catch up during the G20. And I think it would be the right occasion to see how we can re-engage very concretely.
फेसबुक के पूर्व डेटा साइंटिस्ट फ्रांसिस हॉगन ने अमरीकी सेनेट कॉमर्स सब कमेटी ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सामने गवाही में कहा है कि फेसबुक पर जल्द से जल्द कुछ मानक नियम लागू होने की आवश्यकता है। सुश्री हॉगन ने कहा कि फेसबुक बंटवारे की राजनीति को बढ़ावा देता है और बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने साथ यह भी कहा कि कंपनी ऐसी किसी भी उद्देश्य के साथ शुरू नहीं की गई थी, लेकिन उन्हें लगता है कि संस्थापक सीईओ मार्क ज़करबर्ग इन समस्याओं से अवगत हैं।
Mark holds a very unique role in the tech industry in that he holds over 55% of all the voting shares for Facebook. There are no similarly powerful companies that are as unilaterally controlled. And in the end, the buck stops with Mark. There is no one currently holding Mark accountable but himself.
और अब खबरें भारत से। भारत के स्वदेश निर्मित कोरोना टीके कोवैक्सिन को WHO से मंजूरी मिलने पर अगले सप्ताह तक फैसला आ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। सितंबर में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा था कि भारत बायोटेक के COVID-19 रोधी टीके कोवैक्सिन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की मंजूरी देने के लिए सूचीबद्ध किए जाने के कंपनी के आग्रह पर फैसला अक्टूबर में दिया जाएगा। भारत बायोटेक ने अपने टीके के लिए 19 अप्रैल को रुचि प्रस्ताव भेजा था। WHO ने कहा था कि उसने टीके संबंधी आंकड़ों की समीक्षा 6 जुलाई को आरंभ कर दी थी। इस मंजूरी के बाद ही कोवैक्सीन को दुनिया भर के अधिकांश देशों द्वारा स्वीकृत वैक्सीन माना जाएगा, जिससे भारत में वैक्सीन पाए व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना आसान हो सकेगा। भारत में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक केरल में अब बच्चों के लिए स्कूल 1 नवंबर से खुलेंगे। राज्य शिक्षा मंत्री वीना जॉर्ज और सार्वजनिक शिक्षा मंत्री वी सिवान कुट्टी ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को इस योजना की रूपरेखा सौंपी। स्कूल खुलने की रूपरेखा के अनुसार स्कूलों में वैयक्तिक और ऑनलाइन दोनों रूप से पढ़ाई की जाएगी। पहले चरण में हर क्लास के बच्चों को छोटे छोटे बैच में बांटा जाएगा ताकि क्लास में अधिक बच्चे एक समय पर ना हो और दिव्यांग बच्चों को स्कूल आने से रोका गया है। सभी स्टाफ को कोरोना टीके की दोनों खुराकें लगे होने पर ही काम पर आने की अनुमति होगी। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.39 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 73 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। पूर्व मटिल्डा स्ट्राइकर लीजा डेवाना के यौन शोषण के आरोप लगाने के बाद फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व खिलाड़ियों से आग्रह किया है कि वे आगे आकर अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। सुश्री डेवाना और साथी खिलाड़ी राली डॉब्सन उन शीर्ष महिला स्पोर्ट्स खिलाड़ियों की सूची में सबसे नई है जिन्होंने खेल में विषाक्त संस्कृति को सार्वजनिक रूप से उजागर किया है। सुश्री डेवाना ने आरोप लगाया है कि अपने 150 अंतर्राष्ट्रीय खेलों के सुसज्जित करियर में उन्हें समलैंगिक यौन शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी शीर्ष गोल दागने वाली डेवाना ने बताया कि उनके साथ ये उत्पीड़न 2001 में हुआ जब उन्होंने 17 साल की उम्र में यंग मटिल्डास की टीम के साथ खेलना शुरू किया था। और अंत में एक नज़र कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप छाई रहेगी, यहाँ अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, यहाँ अधिकतम तापमान 21 डिग्री जबकि न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी कल हल्की बारिश के आसार हैं, 16 डिग्री अधिकतम तापमान जबकि 8 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने के आसार हैं। देश की राजधानी कैनबरा में कल हल्के बादल छाए रहेंगे, यहाँ अधिकतम तापमान 19 जबकि न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में तेज हवाओं की आशंका है, यहाँ अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में अधिकांश रूप से धूप ही धूप है, अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप बने रहने की संभावना है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।